میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل جس میں کڈس بھی شامل ہے، اس سے متعلق اسلامی بھائی الحمدللہ اس وقت جمع ہیں اور ان میں سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار خصلتیں یعنی چار عادتیں ایسی ہیں جو اگر تم میں ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی محرومی کا احساس نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، امانت کی حفاظت۔ نمبر دو، سچ بولنا۔ نمبر تین، حسن اخلاق۔ اور نمبر چار، حلال کمائی کھانا۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوبصورت ہے کہ زندگی کو پرسکون اور آسان بنا دیتا ہے، اور ہمارے کردار کو اتنا یہ خوبصورت بناتا ہے۔ یہ شخص کے بارے میں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، یا کسی بھی جگہ پر وہ اپنا جیتا تو ہے انسان، کہیں نہ کہیں پر لوگوں میں ہی رہتے ہیں، جانوروں میں بھی ہم نہیں رہتے، ہمارا واسطہ گھر ہو یا گھر کے باہر ہو انسانوں سے ہی پڑتا ہے، کسی اور سے ہمارا واسطہ پڑتا بھی نہیں ہے، جنات نظر ویسے ہی نہیں آتے۔ جب ایک شخص کے کردار میں یہ چار عادتیں آ جائیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ امانت دار ہے، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس نے اخلاق کا یہ پیکر ہے، کھاتا حلال ہے، آپ کا دل کرے گا یار محبت اس سے کرنی چاہیے، اعتماد اس پر کرنا چاہیے۔ یہ انسان کی زندگی میں ایسی خصوصیت ہے کہ اس کو اس کے گھر کے اندر بھی سکون دیتی ہے، اس کے گھر کے باہر بھی سکون دیتی ہے۔ امانت کو اسلام میں اور دین میں اتنی امپورٹنس حاصل ہے۔ امانت کو، امانت کے تصور کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو یہ دیا کہ یا یہ ذرا میری پین امانت کے طور پر رکھیے گا، اور میں نے کل کہا بھائی وہ میری امانت واپس کیجیے تو آپ کو یہ بھائی پین آپ کے، بہت اچھی بات، یہ بھی امانت۔ پھر آپ نے اس پین کو اسی طرح رکھا جس طرح ایز اے امانت رکھنے کا حق تھا، اس کو لینے کے بعد دے دینا اپنی جگہ پر ہے وقت پر، مگر پھر اس دوران بھی اس امانت کو کسے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کی بھی باقاعدہ ایک ہمارے پاس گائیڈ لائن موجود ہے، تو اس کی بھی ڈیفینیٹلی اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ مگر یہاں پر ذمہ داریوں پر، پوسٹ پر، عہدوں پر، اتھارٹی پر، رسپانسبلٹی پر، ہر جگہ پر امانت کا ایک قانون لگتا ہے۔ ہمارے جسم کے یہ جو اعضاء ہیں ان میں بھی امانت کا قانون لاگو پڑتا ہے کہ اس میں بھی خیانت نہیں کرنی، اللہ پاک نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز میں اس چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ امانت کا تصور بہت بڑا ہے۔ عہدے جو ہوتے ہیں ذمہ دار، مثال کے طور پر جیسے ایچ او ڈی ہے، ایک ایگزام، کیونکہ ابھی آپ کا فیلڈ ہے تو میں آپ کے فیلڈ سے ہی ایک ایگزامپل کوڈ کر دیتا ہوں آپ کو۔ آپ میں سے ایک ایچ او ڈی ہے، اس ایچ او ڈی کو کسی بھی سیٹ پر، کسی بھی پوسٹ پر کسی کو بٹھانا ہے، مجلس ہے، کسی کو کسی جگہ پر لانا ہے، اگر اس سے اہل شخص موجود ہے جسے اس جگہ پر لایا جا سکتا ہے، اور وہ اس اہل کو، اس کیپیبل کو، उस सीट पर नहीं लाता जिसके लाने की उसको इख्तियारात भी है और वो ला भी सकता है, और उससे छोड़कर वो किसी और को अगर उस जगह पर वो लाता है जो कि वहां का कैपेबल नहीं है, उसकी ना वो एलिजिबल है, ना उसकी वो सलाहियत है, ना काबिलियत है, तो उसने जो ये काम किया उसने अपने इख्तियारात का, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, जो कि खयानत के हुक्म में आता है। ये अमानत के बाब में, यानी अमानत की जो तफासीर में, जो अमानत की जो डिटेल लिखी हुई है, ओहदे के नाम पर, माल के नाम पर, आपकी जॉब के नाम पर, आपकी किस चीज के नाम पर, किस चीज के नाम पर, अमानत ही अमानत है। अमानत का एक बड़ा खूबसूरत सा एक तस्वुर है हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में। प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो अमानत अदा ना करे वो ईमानदार नहीं, जो अमानत अदा ना करे वो ईमानदार नहीं, और जो अहद यानी वादा पूरा ना करे वो दीनदार नहीं। अब इस बात को मजीद हम इसको खोलते हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का फरमान सुनिए, बड़ा ईमान अफरोज फरमान है आपका, अमानतदारी पर इस वक्त मैं बात कर रहा हूं। फरमाते, किसी शख्स की नमाज को देखो ना रोजे को, ये देखो वो अपनी बात में किस कदर सच्चा है, और जब इसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो किस कदर अमानतदार है, और जब उस पर दुनिया पेश की जाए तो वो किस कदर मुत्तकी है। क्या खूबसूरत बातें हैं, तीन बातें खूबसूरत बयान हुई ना, एक तो दुनिया के ताल्लुक से, अमानत के ताल्लुक से, सच बोलने के ताल्लुक से। हदीस जो मैंने पहले बयान की उसको ना भूलिएगा, चार आदतों को नहीं भूलना, अमानत की हिफाजत, सच बोलना, हुस्न अखलाक और हलाल कमाई खाना। हर सुनने वाला शायद समझेगा कि यह बयान मेरे लिए है, कि वह मेरा इन चारों से वास्ता है, मैं जिस जहां काम करता हूं वहां मुझे अपनी जिम्मेदारी के तौर पर जो मुझे अमानतें हैं, जो मैंने वादे किए हैं, हमें से हर एक माहिदे पर है, आपस में हमारा एक कंपनी के साथ, इदारे के साथ एक माहिदा होता है, कमेंटमेंट होती है ना, मैं इस कमेंटमेंट पर मुझे उतरना है। तो अमानतदारी, सच्चाई, हुस्न अखलाक और हलाल कमाई, ले भाई बेरा पार है इंशाल्लाह। अगर अमानतदार नहीं, ईमानदार नहीं, सच नहीं बोलता, अच्छा आदमी नहीं, उसने अखलाक का मुजहरा नहीं करता, बदतरीन आदमी है, बद अखलाक बदतरीन आदमी है। तुम्हें से बेहतर हुआ जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं, अखलाक का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और जिसके अखलाक जितने ज्यादा अच्छे होंगे वो कयामत के दिन इतना ही प्यारे मुस्तफा के करीब होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी खूबसूरत बात है यार, जिसे चाहिए कुर्ब मुस्तफ़ा उससे चाहिए कि उसने अखलाक इख्तियार करे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कितनी खूबसूरत बात की कि ना नमाज देखो ना रोजा देखो। नमाज की अपनी इंपॉर्टेंस है, रोजे की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहां टॉपिक जो है ना वो एक आपस की जो रिलेशंस होते हैं ना, ये याद रखिए, आपस का जो रिलेशन है ना, मामलात, इसको बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है शरीयत में। बारे शरीयत हमारे जो अहले इल्म है उन्होंने देखी होगी, बल्कि बारहा देखी होगी। बाहर शरीयत का पहला हिस्सा तो अकाइद पर है, ईमानियात अकाइद, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सातवां हिस्सा, ये इबादात पर चल रहा है ज्यादातर, इबादात इबादात इबादात, रोजा भी है, नमाज भी है, हज भी है, जक़ात भी है, ये सारे हिस्से चल रहे होते हैं। अब इससे आगे बढ़ते चले जाएं तो निकाह से लेकर तिजारत तक, तिजारत से लेकर आगे तक मामलाती मामलात है, मामलाती मामलात, यानी कि 20 हिस्से कमोबेश बाहर शरीयत के बताए जाते हैं ना, 20 हिस्से, 16वां हिस्सा भी मामलात पर ज्यादातर डिपेंड करता है, बहुत सारी इसमें लिखी हुई है। और उसमें से शुरू के पहला हिस्सा तो अकाइद पर है, जो बेस है, बुनियाद है। इमारत बहुत बड़ी भी बनाए तो बुनियाद तो बुनियाद होती है ना, इसी के ऊपर सारी खड़ी होती है। बुनियादें 7 मंजिलों पर नहीं होती, बुनियादें तो जमीन के अंदर होती हैं। तो पहला हिस्सा है वो बुनियाद है, ईमानियात, अकाइद, नजरियात आपके कैसे होने चाहिए, उसकी दुरुस्ती, उसकी परफेक्शन पर ये पहला चैप्टर है बाहर शरीयत का। अल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद आप चलते चले जाएं, फराइज है, नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, ये सारे इससे चल रहे हैं, मगर इसके आगे हम जाते हैं तो मामलात का बयान शुरू हो जाता है, निकाह का बयान शुरू हो जाता है, इसके आगे जाते हैं तो तिजारत का बयान शुरू हो जाता है, इसके आगे जाते दिखे ये चीजों के बयान शुरू हो जाते हैं। इससे भी संबंधित कोशिश करें कि दीन में, इस्लाम में, हमारे मजहब में मामलात की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, और जहां इबादात का जिक्र पड़ते हैं ना उसमें भी कई जगह पर मामलात का बयान मिलेगा, लोगों को तकलीफ पहुंचाने और ना पहुंचाने के ताल्लुक से। हज में देख लें, हजर अस्वद का बयान पढ़ लें, इसी तरह नमाज के अंदर, तिलावत के अंदर भी अगर हम बयान पढ़ लें, तो हमें लोगों के साथ जो इंट्रैक्शन है, लोगों के साथ जो कनेक्शन है, आपको कहीं कहीं आपको वजाहत मिलेगी कि पब्लिकली हमें कैसे रहना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिकली कैसे रहना। अब मैं अपने को क्या, एक जुमला है, अपने को क्या, क्यों अपने को नहीं भैया, चंकल मंगल में थोड़ी रहते कि अपने को क्या, इंसानों में रहते इंसान की तरह रहना पड़ेगा, इंसानों में रहकर दरिंदों और जानवरों वाली तो आदत तो चलेगी नहीं ना, चल ही नहीं सकता, जैसे इंसान जंगल में नहीं चल सकता, इसी तरह कोई जंगल की आदतें लेकर इंसानों में भी नहीं चल सकता। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान और इस्लाम और दीन और कुरान और हदीस और शरीयत की बातें करेंगे, और ये वो बातें मैं आपको करने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बातें कर रहा हूँ इससे अल्लाह की रहमत शामिल है, ना सिर्फ आखिरत बल्कि रब की रहमत शामिल आ रही, तो दुनिया भी संवरेगी और दुनिया खूबसूरत और बेहतर हो जाएगी। भाई आप कमाते क्यों हैं, सुकून के लिए, राहत के लिए, आसानी के लिए, बंदा क्यों कमाता है, बेचैन रहने के लिए, परेशान रहने के लिए, दुख पालने के लिए कि यार जितना कमाओ तो इतना दुख बढ़ रहा है, बंदा कमाता ही अपनी जिंदगी को आसान और सहूलत की तरफ ले जाने के लिए। ये बात, मोटी बात याद कर ले कि ये आसानी और सहूलतें नोटों के ढेर में नहीं है, अल्लाह की रहमत में। ये जो राहत और सुकून है ना, ये नोटों के ढेर में नहीं छुपा हुआ, नोटों के ढेर में तो ज्यादातर लोगों के लिए गम छुपे हुए हैं, दुख छुपे हुए हैं, परेशानियां छुपी हुई हैं, इतना नोटों का ढेर है मगर इलाज नहीं हो रहा, इतना नोटों का ढेर है खाना नहीं खा सकता, इतना नोटों का ढेर है बीवी छोड़कर चली गई है, इतने नोटों का ढेर है औलाद बात भी नहीं कर रही है, इतने नोटों का ढेर लगा हुआ है, वफा ढूंढ रहा है वफा नहीं मिल रही, शिफा ढूंढ रहा है शिफा नहीं मिल रही, नोटों का ढेर लगा हुआ है, नोटे खाएगा ये यार, ये आजकल 75 की नोट नहीं आई है, ये खा लूं शायद हो सकता तभी सही हो जाए, नहीं होता है, नोटों में क्या कुछ भी नहीं है। असल तो है अल्लाह पाक की रहमत, जिसे नसीब हो गई, अल्लाह पाक की रहमत जिसे मिल गई, अल्लाह पाक की मतलब ये नेमत, यकीन माने कि अल्लाह पाक उसको सुकून दे देता है, राहत दे देता है, और वो अमानतदारी में, ईमानदारी में, दियानतदारी में, शराफत में, हुस्न अखलाक में और हलाल कमाई में ये बात छुपी हुई है। आप झूठ बोल दें आपको मैं लिख कर देता हूं और लाइफ टाइम परेशान रहेंगे। एक बार आपको किसी ने कहा भाई क्यों लेट हो गए, अब आपको सच नहीं बोलना, नहीं बोलना भाई, आदत होती है नहीं सच बोलना, बातों की तबीयत होती है, जब तक झूठ नहीं बोलेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा, बिला वजह झूठ बोलेगा, नहीं इसके पास वजह मौजूद है मगर उसको पास आदत है, उसको लगता है सच बोलने का होता ही नहीं है, माज़ अल्लाह झूठ बोलने का होता है, वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलकर वो आ गया बैठ गया, भाई क्यों लेट हुए थे, वो मोटरसाइकिल भी पंचर करवा देगा, माँ भी बीमार करवा देगा, बच्चा भी बीमार, एक बच्चा तो है नहीं कि बोलेगा रोज एक बीमार होता है, बोलेगा कल तो बीमार हुआ था सर, वो छोटा था, बड़ा वाला आज बीमार हुआ था। अच्छा अब वो माँ को बीमार करेगा, कभी बहन को बीमार करेगा, कभी बाप को बीमार करेगा, क्यों बीमार करेगा, कभी कोई नलका इसका लीक हो जाएगा, कभी छत टपकना शुरू हो जाएगी, बहुत सारी चीजें जो घर में हो सकती हैं, वो हर चीज का झूठ का गुणवान बना हुआ है। अच्छा अब उसको नेक्स्ट टाइम जब पूछा जाएगा ना क्यों लेट हुए, तो पहला तो सोचेगा कि कल क्या बोला था, कल कौन बीमार हुआ था, ऐसा तो नहीं कल माँ को बीमार किया तो बोले तेरी दो माएँ तो थी नहीं, ये तो एक माँ थी। अब वो झूठ, क्योंकि झूठ उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, सच याद नहीं रखना पड़ता, सच तो वाकया जो हुआ है उसी का नाम है, ये प्रिंसिपल याद करे, झूठ परेशान कर देता है कि यार क्या बोला क्या था। झूठे आदमी का चार दफा, ये पुलिस जब झूठे को पकड़ लेती है ना, इसकी एक तरीके का ये होता है, आपने देखा होगा एक आदमी पूछ के जाता है, दूसरा पूछ के जाता है, तीसरा पूछ के जाता है, चार चार आदमी अलग अलग उसका इंट्रोगेक्शन करते हैं, वो चारों लिखते हैं, चारों की बातें मुख्तलिफ होती हैं, समझ लेते हैं कि ये बना रहा है, ये सोच रहा होता है पहले को क्या बोला था मैंने, फिर दूसरे को अब क्या बोलना है, अब दो को क्या बोला था वैसे भी तीसरे को बोलना है, अब वही बात चौथे को बोलनी है, उस पर फर्क तो आएगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था। अब आते एक और सूरत याल, पकड़ा ही नहीं गया, अंगूठा लगाया नहीं लगाया, नहीं आया नहीं आया, आपस की दोस्तियां थी, काम चलता रहा, कमाता रहा, आराम कमाता रहा, सारी चीजें आप करके निकल भी गए। मुझे ये बताइए कयामत के दिन वो रब को क्या जवाब देगा? मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक, सिवाय इसके कि कोई और रास्ता ही नहीं है कि दुरुस्त है। ये आला हज़रत लिखते हैं, वाह नहीं बात बनाने की मजाल, वाह नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है। अरे वो गाफिल बेपरवाह देख, सर पे तलवार है क्या होना है। उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। क्या जवाब क्या देंगे उस बेचैनी का? क्या जवाब देंगे जो झूठ बोलकर पैसे घर पे ले गए? उस झूठ का क्या जवाब देंगे जो कर करा कर हम आगे बढ़ गए? कोई पकड़ने वाला को जा, सारे बच्चे मामा बैठे हुए हैं, मेरे से ज्यादा अक्लमंद कौन है? तो अक्लमंद नहीं है, तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जो झूठ बोल के कमाते हैं वो बड़ा बेवकूफ। अक्लमंद को तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद कौन होता है? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अकले कुल, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अक्लमंद कौन होता है? अक्लमंद वो होता है जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करता है। जो जितनी ज्यादा आखिरत की तैयारी करे वो उतना ही ज्यादा अक्लमंद होता है। किसने कह दिया ये बेवकूफ बनाने वाला, ये झूठ बोलने वाला अक्लमंद होता है? ये बेवकूफ होता है, इतना बड़ा बेवकूफ होता है, इसको यही नहीं पता कि सच की ताकत क्या होती है और झूठ की कमजोरी क्या होती है। इसे कमजोर छत पर पांव रख दिया है, कभी भी टूट जाएगी। सच की छत पर पांव रखता थोड़ी देर भले हो सकता था पांव जल जाता, मगर गिरता नहीं। सांच को आंच नहीं, बड़ा मशहूर जुमला है। अपनी कमाई को हलाल करना, पैसे वाला बनना कमाल नहीं है, हलाल के साथ पैसे वाला बन के बताए तो मानोगे तू मर्द का बच्चा है। अब धोखा देकर, झूठ बोलकर, मिलावट करके और 10 किस्म के गंदे काम करके बंदा बोले मैं पैसे वाला बन गया, मैं मालदार बन गया। सूद खाकर रिश्वत क्या खाता है? कोई रिश्वत खाता है, कोई सूद खाता है, कोई क्या खाता है? मुलाजिम आदमी कुछ और खाता है। हराम कमाने के लिए मुलाजिम के पास भी रास्ते कम नहीं है। तो बिल्कुल सही बोले, 8-8, 10-10 घंटे की मेहनत, थक गया, घर जाकर चुना हो गया, गिर गया, टिफिन तक उठाने की इसकी ताकत नहीं है। मगर उसको देखना ही है कि आज के 10 घंटे 12 घंटे का जो इसको इजारा मिलेगा वो हलाल है या हराम है। इतना बड़ा शरबत का आप पतीला बना लें, इतना बड़ा शरबत का मतलब कि वो टैंक बना लें, एक कतरा पेशाब डाल दे उसके अंदर, एक कतरा शराब डाल दे उसके अंदर, मैं कहता एक कतरा जहर डाल दे, मुझे बताए वो पूरा शरबत किस काम का? अपनी कमाई को हलाल करना। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए कि मेरी दुआ कबूल हो, मेरी दुआ कबूल हो। इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी गिजा को पाकिजा कर लो, अपनी कमाई पाकिजा कर लो, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मुश्किल तरीन काम है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मैं सही बता रहा हूं आपको, मुश्किल तरीन काम बता रहा हूं। अपनी कमाई को हलाल करना, रुपया रुपया, 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 100-100 रुपया, 200-200 रुपया कटवाना इस बात पर कि यार मैं इस टाइम पर सो गया था, मैं इतना लेट आया था, मैं इतना ये हुआ था, मैं इतनी देर मोबाइल लेकर बैठा रहा जो उर्फ की आदत के खिलाफ था, इतनी देर तक मैंने अपने जो आपसे मेरा मुआहिदा था कि मैं इतनी देर ये काम करूंगा जिस पर मुझे इजारा, जिस पर मुझे सैलरी मिलनी है, उस मुआहिदे में जो मैंने बददियानती की है, उस मुआहिदे में जो मैंने खयानत की है, उसका यह है। उस पर देखे मुफ्ती साहब से पूछिए कहां तोबा है, कहां इजाला है, कहां पर रिटर्न करना है, कहां पर क्या करना है। मगर एक तय कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक चीज तय कर लो कि मैंने अपने रोजी में हराम का एक रुपया आने नहीं देना। फिर आप देखो रब की बारगाह से शिफा, राहत, फरहत, सुकून, इत्मीनान, ईमान कामिल, घर की मोहब्बत, घर का प्यार और इदारे का एतमाद और इदारे में इज्जत कितनी मिलती है वो किसी रेट में आप नहीं खरीद सकते। अगर वो मिल सकती है तो ईमानदारी से मिल सकती है। इज्जत जो है ना, इज्जत, इज्जत और वकार, ये मांगा नहीं जाता, ये कमाया जाता, याद रखना। इज्जत और वकार हमेशा कमाई जाती है, मांगी मांगे तो भीख जाती है, भीख मांगने से मिलती है, इज्जत और वकार कमाने से मिलता है, वो किरदार होता है। एक बार एक बार किरदार डैमेज होता है, इतनी किरदार की हसासियत है, किरदार एक शीशे की तरह है, मिरर लाइक अ मिरर है, करेक्टर लाइक अ मिरर, ये याद कर ले आप, करेक्टर लाइक अ मिरर है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मकर धोखा और खियानत दोज़ख में है। मकर धोखा और खयानत कहाँ है? दोज़ख में है। और मकर और खयानत मोमिन की अखलाक में से नहीं है। अबू उमर कहते हैं, अमीर मोमिनीन से पहले ये जुमला किसी की जबान पर जारी नहीं हुआ। ये वो जुमला था मौला अली अमीर मोमिनीन शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का, कि जिसके ताल्लुक से अबू उमर कहते हैं कि ये जुमला आपसे पहले किसी की जबान से जारी नहीं हुआ। इरशाद सुनिए मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का, आप फरमाते हैं, आदमी अपने हुनर ही से आदमी है। आदमी का रुतबा उतना ही है जितना इसका हुनर है। आदमी का रुतबा उतना ही है जितना उसका हुनर है। लिहाजा इल्म में गुफ्तगू करो ताकि तुम्हारे रुतबे जाहिर हों। कमाल की बात की। अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी किसी चीज में इजाफा हो, मेरे रुतबे में इजाफा हो, मेरे मकाम में इजाफा हो, मेरे स्टेटस में इजाफा हो, बोलने से नहीं होगा। हुनर बढ़ाए, सलाहियत बढ़ाए। पिछले दिनों यहाँ रमजान आल में मेरा सिलसिला था कोई इस्लामी भाइयों के साथ, तो मैं अमूमन मिसाल देता हूँ मेरे उन इस्लामी भाइयों की, मजा आता है मुझे ये मिसाल देने में, कि हमारे मदनी चैनल में आए थे, चाय पिलाते थे, आज ये किसी कुर्सी पर बैठे हुए इनको चाय पिलाई जाती है। वो आए थे प्यून बन के, ये चाय पिलाने वाला, और आज कैमरा पकड़ के खड़े होते हैं। ये बढ़ते गए आगे, बढ़ते गए आगे, बढ़ते गए आगे, बढ़ते गए। ये जिस पोस्ट पर आए थे आज उस पोस्ट पर नहीं है, आगे की पोस्ट पर है, और हो सकता है इसे भी आगे बढ़े, और हो सकता है कि कल का चाय पिलाने के लिए मदनी चैनल में आने वाला किसी डिपार्टमेंट का एचओडी बना हुआ हो। कुछ नहीं कह सकते। अगर वो तरक्की करता है, ईमानदार है, दयानतदार है, वक्त देता है अपने इदारे को, तो इदारे में उसके लिए गुंजाइश बनती चली जाती है। कुछ लोग होते हैं जो वक्त ही देते, मुलाजमत के भी कुछ तरीके होते हैं, यानी मुलाजमत में आगे बढ़ने की भी कुछ टिप्स होती हैं। जायज नाजायज की बात नहीं कर रहा, आपने जितना इजारा तय किया है और जो वक्त आपने तय किया है, वो वक्त पूरा हो गया, आप जा सकते हैं। आपको इदारा के तहत ओटी, क्या आप ओवर टाइम लगाएं? आप ओवर टाइम नहीं लगाना चाहते तो इदारा मजबूर तो नहीं कर सकता आपको, एक आदमी नहीं ओवर टाइम लगाना चाहता, ऐसा ही है। आप मजबूर, आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप ओवर टाइम लगाएं लगाएं, वरना हम आपका इजारा खत्म कर देंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई उसूल है, ऐसा कोई उसूल नहीं हो सकता भाई। आपने जो वायदा किया था वो इतने से इतने बजे तक का था। आदमी की 100 कमेंडमेंट होती हैं, अपनी कम आपको कहा जाएगा कि भाई आप ये कर ले, नहीं तो फिर ठीक है, फिर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। लेकिन ये सब चीजें उसूली हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं इदारे के अंदर, अच्छा चंद ही होते हैं, ये भी बता दो, चंद ही होते हैं और कुछ सालों में नुमाया होते हैं, ये चंद ही लोग होते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं होते किसी भी इदारे के अंदर, कि जो इस तरह मतलब के अपनी इजारे से, अपने ये माहिदों से निकल कर अपने इदारे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनके बारे में ऑफिस में बैठे हुए यकीन होता है कि यार वहां देख लो वो बैठे हुए होंगे, वो काम कर रहे होंगे, वो जाते नहीं है। जो नजर आ रहा होता है ना, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ टिप्स दे रहा हूं, टिप्स दे रहा हूं, जिसकी शायद कईयों को शऊर नहीं है। कोई समझता है कि यार यहाँ खून ही निचोड़ा जाएगा, यहाँ पसीना निचोड़ा जाएगा, ये भी निचोड़ा जाएगा, वो भी निचोड़ा जाएगा। अपने अपने फलसफे, अपनी अपनी बातें, अपने अपने लॉजिक्स हैं जो ये सब मतलब के गुफ्तगू कर रहे होते हैं। दावत इस्लामी की खूबी ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी बुरा बोलने से रोक देती है। फल लेने गए आप, गए नहीं गए? फल जब भी आप खरीदेंगे ना, मीठा खरीदेंगे। जिस तरह फल की रेड़ी पर मीठे फल का इंतखाब करते हैं ना, इसी तरह बोलते वक्त मीठे बोल का इंतखाब कर ले। रुक जाए, रुक के और सोचिए कि यार कौन सा लफ्ज अच्छा है जो मैं बोलूं। यानी एक गंदा बुरा लफ्ज ना जाने अल्लाह को कब नाराज करके इसको जहन्नम की गहराई में गिरा दे, उसको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि लफ्ज पता है क्या है, फरिश्ते लिख रहे हैं, क्या लिखवा क्या रहे हैं आप, اچھی گفتگو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک کی کرم سے اتنی عزت ملے گی، یار یہ بندہ اچھا ہے، تمیز والا ہے. ابے تبے اوئے گالم گلوچ، گندی باتیں، فوش باتیں، یا آ کر پھر اپنا ہی کوئی کریکٹر بیان کرنا. رات کو دیکھی تھی فلم، تو یہ بولے گا بھیا میں تو مدنی کارٹون دیکھ رہا ہوں اس وقت، بنی نہیں رہی یہ لائن صحیح، تو کیا مجھے. تو وہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیوں اس طرح کا ہم لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں. اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم مدنی چینل میں ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. خود کو بدل دے، مزاج بدلے، گفتگو بدلے، سوچ بدلے، ایمانداری، دیانتداری، اور پھر آخر میں حلال کمائی. کمانا مجھے حلال ہی ہے. تو چار چیزیں جن کو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا، امانت کی حفاظت، سچ بولنا، لیٹ کیوں ہو گئے، چھٹی کیوں کی، چھٹی چاہیے، پیسے بڑھانے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے سچ بول دیں، جھوٹ نہ بولیں. بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے یار. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو دھوکہ دیا، سامنے والے کو دھوکہ نہیں دیا، اس کے اعتماد کو توڑا ہے آپ نے. اس کو یہ کہ آپ سچ بولتے ہو گئے، یار جھوٹ کیوں بولیں گے آپ. ویسے بھی میرا اپنا تجربہ، جو مومن سچا ہے نا، اس کے سامنے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس کو سامنے والا سچا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو جھوٹ کا وہ ہے ہی نہیں، شعور نہیں ہے. اچھا جو جھوٹا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے سچی بولتا وہ بولتا ہے کہ یار یہ جھوٹا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے کبھی سچ بولا ہی نہیں ہے. ہر آدمی جیسے جھوٹ بولتا ہوگا، تو مومن آدمی اپنی سادگی کی وجہ سے بعضوں کا جھوٹ کے فریب میں آ جاتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتا. مومن، سچا مومن، کامل مومن بیوقوف نہیں ہوتا. تو اللہ کرے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کریں. روزی میں برکت اللہ دینے والا ہے، رزق میں برکت اللہ دینے والا ہے، رزق میں کشادگی دینے والا اللہ ہے. بندہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر نہیں کرتا. اسی طرح اچھی باتیں کریں. ایک تعداد ہے میرے اسلامی بھائیوں کی جو مبلغ ہیں، ماشاء اللہ بادشاہ ہیں، امام والے، داڑھی، ایک بھی ہوتا ہے نا، ایک پورے معاشرے کو بدل کے رکھ دیتا ہے. یعنی اگر ایک محلے میں، ایک علاقے کے اندر ایک اسلامی دعوت اسلامی میں آتا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک اس طرح بھائی دعوت اسلامی میں آتا ہے، پورا محلہ بدل کر رکھ دیتا ہے، مسجد بنا دیتا ہے، مدرسے بنا دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتا ہے، کئی بے نمازی کو نمازی بنا دیتا ہے. میرے اتنے اسلامی بھائی مدنی چینل کی چھت کے نیچے ہیں، کوئی بچ کے جائے گا کیسے یار. اگر اپنی ذمہ داریاں، یہ بھی میرے اسلامی بھائی سمجھ لیں گے، ہماری ذمہ داری صرف کمپیوٹر چلانا اور اسکرین چلانا نہیں ہے. ہمارے یہاں پر یہ بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی یہاں مدنی چینل میں، چاہے وہ کڈس میں آیا ہو یا ہمارا یہ جو ایک جنرل جو مدنی چینل اس میں آیا ہو، جو بھی آیا ہے، میرے کو تو کمانے کا ذریعہ آیا ہے، میری تو روزگار آیا آخرت کا، کہ میں اس کو نیکی کی دعوت دے کر اپنے ساتھ نمازی بنا کر اپنے لیے قبر و آخرت کا ذخیرہ کر لوں. یا اتنے سارے دعوت اسلامی والے کام کر رہے ہوں با امامہ، پھر اس میں مدنی بھی، ماشاء اللہ اللہ آپ کو اور برکت دے، مدنی بھی ہوں، تو اب ان کے ہوتے ہوئے بدہ کیسے بے نمازی. میں تو کہتا ہوں بے نمازی تو دور کی بات ہے، بے نمازی ہونا دور کی بات ہے. مدنی چینل میں، مدنی چینل میں آنے والا صاحب ترتیب ہونا چاہیے. یہ پین کی بات ہے، درد کی بات ہے، درد ہوگا تو سب ہو جائے گا. میرے پیر کو اللہ نے درد دیا ہے. ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ کیوں ہر وقت، ہر تقریب میں، ہر جگہ پر آپ یہی نیکی کی دعوت اور علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ لے کر ترکیب بناتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اصلاح امت کا درد. یہ تین ورڈ ہیں جنہوں نے کل کے الیاس قادری کو آج امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے. امیر اسلام وقف امت ہیں، امت کے لیے وقف ہے. اب بھی ہو سکتے ہیں، روزگار تو ہو ہی گیا نا یار 8-10 گھنٹے کا، اب کیا کرنا ہے؟ اب بھی اگر اسلامی بھائی نے اٹھ کر نکل جانا ہے تو نصیب، مسجد ہے، مسجد میں ادارہ ہے، ماشاءاللہ نیکی کی دعوت ہے، درس و بیان ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے، مدری مذاکرہ ہے. اگر میرے یہ اسلامی بھائی جو اتنے ماشاء اللہ مبلغین ہیں مدنی چینل میں، کڈس میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ، یہ سارے مل کر اگر یہاں پر اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال لینا کہ 8-8, 10-10, 12-12, 6-6 اسلامی بھائیوں پر میں انفرادی کوشش کر نیکی کی دعوت دے کر انہیں انشاءاللہ سنتوں کا پیکر بناؤں گا. اور کیا بھی یہ کرنے والوں نے، اگر چاہے ان کی تعداد تھوڑی ہے مگر کیا ہے. کئی ایسے اسلامی بھائی تھے جو آئے تھے دعوت اسلامی، اس طرح دینی ماحول میں رنگے ہوئے نہیں تھے، مگر آج الحمدللہ ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی والے بن جائیں۔ یہ وہ مقدس ادارہ آپ کو ملا ہے کہ روزگار کمانے کے ساتھ ساتھ جنت کمانے کا موقع یہاں ملے، اور میں چاہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کا یہ پورے ادارے کو اپنا سمجھ کے کریں۔ یہ کسی کا پرسنل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکے گا، یہ ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے اور اس کے دین کا کام کرنے والا ادارہ، اور اللہ نے اس کی خدمت ہمیں نصیب کی ہے۔ تو اس کو بس اچھا اور نیک سمجھ کر کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں۔
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا